HD Smartcast.
You are listening to an HD Smartcast original.
शौर्य भूमि, वीर भूमि, समृद्ध संपन्न भूमि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र चालुक्यों, राष्ट्रकूटों और मराठाओं की भूमि रही, जिनकी वीरता, नगर व मंदिर निर्माण की कला की कहानियों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। वीर शिवाजी ने भी इसी भूमि पर जन्म लिया, वो भी शक्ति के ही उपासक थे। ये प्रांत सदा से ही समृद्ध और संपन्न स्थान रहा है, और मेरा ये मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि माँ महालक्ष्मी ने स्वयं इस स्थान को अपने लिए चुना और आज भी वो यहाँ विराजती हैं। माना जाता है कि माँ महालक्ष्मी चंचला हैं, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, लेकिन इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी महालक्ष्मी के निज स्थान के बारे में, जहाँ माँ सतयुग से स्वयं स्थित हैं, जहाँ दर्शन, पूजा और तप करने से अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और मैं आप सभी का HT Smartcast की ओरिजिनल पेशकश 51 शक्तिपीठ पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग, आभूषण तथा वस्त्र के हिस्से धरती माँ ने धारण किए, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बने। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको ले चलूंगी देवी के 51 शक्ति पीठ की यात्रा पर, जिसमें जानेंगे कि शक्ति पीठ कैसे बने, उनका महत्व क्या है, उसकी कहानी और वहाँ कैसे पहुँचे।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में पंचगंगा नदी के तट पर स्थित है करवीर शक्तिपीठ, जो अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये स्थान महालक्ष्मी का निज निवास माना जाता है। इस स्थान पर देवी सती के तीसरे नेत्र का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी है और भैरव क्रोधाशीष के नाम से जाने जाते हैं। ये वो स्थान है जहाँ माँ आद्या शक्ति अपने महालक्ष्मी रूप में स्वयं निवास करती हैं। महालक्ष्मी रूप में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा तीनों शक्तियाँ निहित होती हैं। क्या आप जानते हैं कि इन्हीं के पीछे पीछे स्वयं नारायण को यहाँ आकर तिरुपति में स्थापित होना पड़ा। कहते हैं इस स्थान के दर्शन किए बिना तिरुपति के दर्शन पूर्ण नहीं होते। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा हेतु कैसी कैसी लीलाएं रचते हैं, कितना प्रेम वो हमसे करते हैं, इसके लिए वो स्वयं कितने कष्ट उठाते हैं, इस बात का एहसास मुझे इस शक्तिपीठ की कहानियां सुनकर हुआ। ये कहानियां मैं आपको आगे सुनाऊंगी। अन्य मान्यताओं के अनुसार देवी का त्रिनेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सुकूर जनपद में शिव हर कराए या शर करारे नामक स्थान पर गिरा था। ये स्थान पाकिस्तान में दुर्गा देवी को समर्पित अति प्राचीन है। इसको वहाँ शिव हर कराए या करवीपुर शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, परंतु हम तंत्र चूड़ामणि, स्कंद पुराण व देवी गीता में उल्लेखित कोल्हापुर में स्थित करवीर शक्तिपीठ को विस्तार से जानेंगे। कोल्हापुर पौराणिक करवी क्षेत्र है, जो स्वयं भगवती महालक्ष्मी द्वारा निर्मित है। देवी गीता में कहा गया है, कोल्हापुरे महास्थानम यत्र लक्ष्मी सदा स्थिता। भावार्थ, कोल्हापुर एक महान पीठ है जहां महालक्ष्मी सदैव विराजती हैं। विभिन्न पुराणों और आगम ग्रंथों में इस शक्ति पीठ की महिमा और प्रशंसा पाई गई है। स्कंद पुराण में इस स्थान का वर्णन कुछ इस प्रकार है, का राष्ट्र देश का विस्तार 10 योजन है, ये देश दुर्गम है, उसी के बीच काशी आदि से भी अधिक पवित्र श्री लक्ष्मी निर्मित 5 कोस का करवी क्षेत्र है, ये क्षेत्र बड़ा ही पुण्यदायी और दर्शन मात्र से पापों का नाश करने वाला है। इस क्षेत्र में वेद परगामी ब्राह्मण और ऋषि निवास करते हैं, उनके दर्शन मात्र से सभी पापों का क्षय हो जाता है। करवीरे त्रिनेत्रम में देवी महिषमर्दिनी क्रोधीशो भैरवस्त्र। यहाँ की जगदम्बा को करवीर सुवासिनी या कोल्हापुर निवासिनी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इन्हें अंबाबाई कहा जाता है। महालक्ष्मी का यह सर्वश्रेष्ठ सिद्ध पीठ है। यहाँ 5 नदियों के संगम से एक नदी बहती है, जिसे पंचगंग कहा जाता है। ये नदी आगे चलकर समुद्र गामिनी महानदी कृष्णा से मिल जाती है। ऐसी पवित्र पंचगंगा सरिता के तीर पर जगन माता महालक्ष्मी का यह नित्य निवास है। निपुरा रहस्य महात्मय खंड के 48वें अध्याय में भारत के प्रमुख 12 देवपीठों का उल्लेख और उनका महात्मय वर्णित है, जिसमें करवीरे महालक्ष्मी कहा गया है। इसी प्रकार देवी भागवत और मत्स्य पुराण में वर्णित 108 दिव्य शक्ति स्थानों में भी करवीरे महालक्ष्मी कहा गया है। करवीर महात्मय में इस सिद्ध स्थान को प्रत्यक्ष दक्षिण काशी कहा गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार महर्षि अगस्त्य अपनी पत्नी पतिव्रता लोपा मुद्रा के साथ काशी से दक्षिण आए और यहीं बस गए, इसलिए इसे काशी से श्रेष्ठ कहा गया है। वाराणस्याधिकम क्षेत्रम करवीरपुरम महता भुक्ति मुक्ति प्रदम नणाम वाराणस्यायवाधिकम। इसका अर्थ है, वाराणसी की अपेक्षा इस करवीर क्षेत्र का महात्म्य यव यानी जौ भर अधिक ही है, क्योंकि यहाँ भुक्ति और मुक्ति दोनों मिलते हैं। ऐसा मानते हैं कि वाराणसी में भगवान शिव केवल ज्ञानदायक हैं, किंतु करवीर क्षेत्र में ज्योति रूप केदारेश्वर ज्ञानप्रद तो हैं ही, भोग मोक्ष प्रदायिनी महालक्ष्मी भी यहाँ निवास करती हैं, इसलिए यहाँ दर्शन करने वाला भक्त धन संपदा और आत्मिक ज्ञान तीनों से युक्त हो जाता है। इस तरह भुक्ति मुक्ति प्रद होने से यहाँ के निवासी इस स्थान का महात्म्य काशी से अधिक ही मानते हैं। इस शक्तिपीठ की महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि यहाँ माँ लक्ष्मी के दर्शन करने से कोई भी संकल्पित कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण होते हैं। मान्यता के अनुसार नगर में कोई भी विवाह आदि मंगल काम होता है तो पहला निमंत्रण देवी के चरणों में समर्पित किया जाता है और मंगल कार्य संपन्न होने पर प्रत्येक परिवार देवी का दर्शन और पूजन करता है। इस स्थान का नाम करवीपुर क्यों पड़ा, इसकी कहानी बहुत सुंदर है। दुर्गा सप्तशती में उल्लेख आता है कि देवी माँ का हृदय इतना पवित्र और करुणा से भरा हुआ है कि वो इन दैत्यों को अपने हाथों से इसलिए मृत्यु प्रदान करती हैं जिससे कि उनका भी कल्याण हो और वो मुक्ति प्राप्त करें। लक्ष्मी विजय और करवीर क्षेत्र महात्मय ग्रंथों से ज्ञात होता है कि अति प्राचीन काल में कोलासुर नामक एक असीम सामर्थ्य वाला दैत्य था, जिसने धरती पर हाहाकार मचाया हुआ था। वो देवताओं द्वारा भी अजय था तथा साधु संतों को अत्यंत कष्ट देता था। अंततः उससे त्रस्त देवताओं ने भगवान शिव की शरण प्राप्त की। उसे पहले ही वर प्राप्त था कि स्त्री शक्ति के अतिरिक्त उसका कोई वध नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने देवी से प्रार्थना की और देवी माँ सिंह पर सवार हो करवीर नगर में आ पहुंची। कोलासुर नामक दैत्य के साथ उनका घमासान युद्ध हुआ। अंत में देवी ने दैत्य का संहार कर दिया और उसे परम गति प्रदान की। मरने से पूर्व वो असुर देवी की शरण में आ गया, इसलिए देवी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। उसने कहा, इस क्षेत्र का नाम मेरे नाम से हो। भगवती ने तथास्तु कहा और उसके प्राण भगवती में लीन हो गए। ये देखकर देवता आनंद मग्न हो गए। बहुत बड़ा विजयोत्सव मनाया गया। देवताओं ने देवी की बारंबार स्तुति की। तभी से देवी इस स्थान पर प्रतिष्ठित हो गई और करवीर क्षेत्र को कोलापुर की संज्ञा भी प्राप्त हुई। समर्थ स्वामी रामदास ने भी महालक्ष्मी की स्तुति करते समय उन्हें कोलासुर विमर्दिनी कहा है। इस प्रकार देवी ने इस प्रसंग के माध्यम से हमें समझाया कि हमें शत्रुओं के भी कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। इस स्थान की महिमा इतनी ही नहीं और भी अद्भुत है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ईश्वर अपने भक्तों के कल्याण हेतु स्वयं कितना कष्ट उठाते हैं, ऐसी ही एक लीला माँ लक्ष्मी ने इस स्थान पर सदा रहने के लिए और स्वयं नारायण को धरती पर लाने के लिए अपने भक्तों के कल्याण के लिए रची। इस लीला से भक्तों को तिरुपति बालाजी तीर्थ स्थान प्राप्त हुआ। सप्त ऋषियों में से एक महर्षि भृगु एक बार नारायण से मिलने बैकुंठ गए। नारायण उस समय निद्रा में थे। उनका ध्यान ऋषि भृगु की ओर नहीं गया। इस वजह से ऋषि भृगु क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर उन्होंने श्री नारायण को लात मारी। ये कहानी हम सब ने सुनी है। आज भी नारायण की हर प्रतिमा के हृदय पर उनके पद चिन्ह दिखते हैं। इस प्रसंग के बाद श्री हरि ने उनसे क्षमा मांगी और उनका क्रोध शांत किया, उनका आतिथ्य सत्कार किया। महर्षि भृगु बैकुंठ से चले गए, लेकिन माँ लक्ष्मी इस बात से क्रोधित होकर धरती पर चली आई और कोल्हापुर में इसी स्थान पर स्थिर होकर रहने लगी। उनके पीछे पीछे नारायण भी उन्हें मनाने पृथ्वी पर आ गए। देवी माँ को मनाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मानी। देवी उनके साथ वापस नहीं गई। तब श्री हरि भी तिरुपति में स्थिर होकर रहने लगे और वहीं उनकी प्रतीक्षा करने लगे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि माँ अंबाबाई शक्तिपीठ या महालक्ष्मी के दर्शनों के बिना तिरुपति के दर्शन पूर्ण नहीं होते। आज भी दशहरे के अवसर पर माँ अंबाबाई के लिए तिरुपति से साड़ी भेंट में आती है, जिसे माँ अंबाबाई को पहनाया जाता है। इस मंदिर में स्वयं सूर्य देव नवम्बर से फरवरी तक माँ के दर्शनों को आते हैं और उनकी मूर्ति को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं। मुंबई से 472 किलोमीटर और पुणे से 280 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में महाद्वार रोड बी वार्ड में स्थित है देवी का करवीर शक्तिपीठ, जिसे महालक्ष्मी मंदिर और माँ अंबाबाई का निज निवास भी कहा गया है। यहाँ स्थित माँ महालक्ष्मी की प्रतिमा स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुई है। ये स्थान बहुत से रहस्यों से परिपूर्ण है। पद्म पुराण और करवीर महात्म्य में भी इस स्थान के विषय में लिखा है कि ये करवीर नामक क्षेत्र 108 कल्प प्राचीन है, क्योंकि ये आद्या मातृशक्ति का मुख्य पीठ स्थान है। इस क्षेत्र को दक्षिण काशी कहा जाता है। ये देवी अनेक परिवारों की कुलदेवी के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये मंदिर ही अपने आप में वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है और बहुत रहस्यमयी है। ये मंदिर उन सभी प्रमुख राजवंशों के संरक्षण में रहा जिन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में चालुक्य के वंश के राजा करण देव के शासनकाल में हुआ था। ये प्राचीन काल में हेमंत पंथी के रूप में जानी जाने वाली स्थापत्य वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये मंदिर 27,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। स्वयं महालक्ष्मी का घर है, तो आप स्वयं सोचें कि कितना भव्य होगा। बाहर से ये किले की तरह प्रतीत होता है। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो बाहर ही प्रसाद की दुकानें हैं, जहाँ से आप माता की चुनरी और प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर परिसर का भव्य प्रवेश द्वार है, जिसे महाद्वार भी कहा जाता है, जो किसी बड़े किले के प्रवेश द्वार जैसा प्रतीत होता है। महाद्वार के अंदर प्रवेश करते ही एक बहुत बड़ा प्रांगण है और सामने ही मुख्य मंदिर है। इसकी खास बात यह है कि इस मंदिर की वास्तु रचना श्री यंत्र पर है। ये 5 शिखरों 3 मंडपों से सुशोभित है। 3 मंडप हैं, गर्भगृह मंडप, मध्य मंडप और गरुड़ मंडप। मंदिर के शिखर सफेद, केसरी और पीले रंग के हैं। मंदिर की दीवारें ग्रे पत्थर से बनी हुई हैं। ये दीवारें चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ये मंदिर अलग अलग चट्टानों से निर्मित है, जो किसी भी प्लास्टर से जुड़ा नहीं है, और यही बात इस मंदिर के आर्किटेक्चर को विशेष बनाती है। बीच के मंडप में मुख्य देवी महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित है। अन्य 4 में माँ दुर्गा, महाकाली, महासरस्वती और गणपति के स्थान हैं। प्रमुख एवं विशाल मध्य मंडप में बड़े बड़े ऊंचे स्वतंत्र 16x128 स्तंभ हैं, जो महाराष्ट्रीय दीप स्तंभों जैसे प्रतीत होते हैं। इस मंदिर की दीवारें उत्तम नक्काशी और कई मूर्तियों से सुशोभित हैं। सबसे पहले मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। गलियारे से होते हुए माता की मुख्य प्रतिमा के दर्शन होते हैं। अंदर का द्वार और चौखट चांदी से निर्मित है और प्रधान भाग नीले पत्थरों का बना है। ये मंदिर अंदर से बहुत कुछ बांके बिहारी और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसा ही प्रतीत होता है। दीवार पर बहुत बड़ा श्री यंत्र है, जो आदि शंकराचार्य जी ने स्वयं स्थापित किया था। माँ की ये अद्भुत प्रतिमा स्वयंभू है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। ये यहाँ स्वयं प्रकट हुई है। देवी का ये श्री विग्रह हीरा मिश्रित रत्न शिला से बना है। ये विचित्र चमक लिए हुए है। इस मूर्ति में स्थित पद्म रागमणि भी स्वयंभू ही है, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं। ये प्रतिमा 3.5 फुट ऊंची है। त्रिभुजी माँ के हाथ में मातुलुंग, गदा, ढाल, पान पात्र तथा मस्तक पर नाग, लिंग और योनि है। माँ के साथ उनका सिंह भी है। देवी माँ का श्रृंगार बहुत ही सुंदर और भव्य होता है। सोने चांदी और हीरे के आभूषणों से माँ सदैव सुसज्जित रहती हैं। इस प्रतिमा में इतना तेज है कि इसके दर्शन करने मात्र से ही मन शक्ति प्राप्त कर लेता है और हमारी सारी नकारात्मकताएं, कठिनाइयां, परेशानियां हमें छोड़कर चली जाती हैं। माँ के इस विग्रह से आंखें हटाने का मन ही नहीं करता। मन करता है इनका सुंदर स्वरूप बस देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। माना जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में बेशकीमती खजाना छुपा है। 3 साल पहले जब इसे खोला गया तो मंदिर से हजारों साल पुराने सोने, चांदी और हीरे के ऐसे आभूषण सामने आए जिनकी बाजार में कीमत अरबों रुपए है। इतिहासकारों की माने तो कोल्हापुर में इस महालक्ष्मी मंदिर में कोंकण के राजाओं, चालुक्य राजाओं, शिवाजी और माँ जीजाबाई तक ने चढ़ावा चढ़ाया है। जब मंदिर के खजाने की गिनती शुरू हुई तो इसकी पूरी कीमत का अंदाजा लगाने के लिए करीब 10 दिन का वक्त लगा। इस शक्तिपीठ में सारा दिन माता की पूजा अर्चना होती है। सुबह काकड़ आरती से लेकर मध्य रात्रि की शैया आरती तक अखंड रूप से पूजा अर्चना, शहनाई वादन, भजन कीर्तन और पाठ चलता रहता है। इनके दर्शनों के पश्चात त्रिशक्तियों और गणपति के दर्शन होते हैं। महालक्ष्मी के निज मंदिर के शिरोभाग पर शिवलिंग तथा नंदी का मंदिर है तथा वेंकटेश, कात्यायनी और गौरी शंकर के भी देवकोष्ठ हैं। इस मंदिर की महिमा, सुंदरता और अनुभव को मैं कितना ही शब्दों में बयान करना चाहूँ पर वो कम ही पड़ेगा। सच तो ये है कि हमारी देवी माँ गुणातीत हैं और उन अनंता को शब्दों में कहना असंभव है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय नवरात्रि, दशहरा और दीपावली है। उन दिनों ये स्थान स्वर्ग सा सुंदर प्रतीत होता है। इसके अलावा नवंबर से फरवरी तक का समय भी श्रेष्ठ है। उन दिनों स्वयं सूर्य देव भी माँ के दर्शनों को आते हैं। दशहरा और दीपावली की आरती का यहाँ विशेष महत्व है। वो अचल संपत्ति, बुद्धि और सिद्धि देने वाली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ रेल मार्ग, सड़क मार्ग या वायु मार्ग किसी भी तरह से आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा कोल्हापुर एयरपोर्ट है। यहाँ से मंदिर 11 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ से यहाँ आधे घंटे में पहुँचा जा सकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन CSMT टर्मिनल कोल्हापुर है, जो मुंबई के साथ ही बेंगलोर, नागपुर आदि शहरों से रेल सेवा से जुड़ा है। यहाँ से मंदिर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कोल्हापुर पुणे को बेंगलोर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर स्थित है। मुंबई, पुणे व अन्य बड़े शहरों से कोल्हापुर के लिए सीधी बस सेवाएं भी संचालित होती हैं। यहाँ पर ठहरने के लिए कोल्हापुर में सभी लग्जरी व बजट होटल्स, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। माता के इस दिव्य तीर्थ के अलावा यहाँ और भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे पन्हाला का किला, छत्रपति शाहू संग्रहालय, रंकाला झील, ज्योतिबा मंदिर, दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ड्रीम वर्ल्ड वाटर पार्क इत्यादि। जब आप यहाँ आए तो यहाँ की प्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पलें खरीदना ना भूलें। तो अब देर किस बात की, अब हमें एक ऐसे स्थान का पता चल चुका है जहाँ आते ही हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, हमारे सारे कार्य बन जाएंगे और यदि बिना किसी इच्छा के हम यहाँ के दर्शन करते हैं तो वो पुण्य जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहने वाले हैं। तो जल्दी से कोल्हापुर की टिकट बुक कीजिए और चले आइए माता के दर्शनों के लिए। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको ले चलूंगी हिमाचल प्रदेश के नैना देवी शक्तिपीठ में, जहां माता के दोनों नेत्र गिरे थे। आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं हूं निष्ठा सारस्वत और आप सुन रहे हैं 51 शक्तिपीठ। अगर आप कोई जानकारी या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, निष्ठा सारस्वत ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। साथ ही आप HT Smartcast को भी फॉलो कर सकते हैं उनके सभी सोशल हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग इन करें htsmartcast.com पर।
इस पॉडकास्ट सीरीज को केवल मनोरंजन और जानकारी के लिए बनाया गया है। इसमें साझा किए गए 51 शक्तिपीठों की जानकारी का आधार आपसी कही सुनी और पौराणिक किताबें हैं। इससे हमारा उद्देश्य किसी भी मनुष्य, जाति या समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसलिए इससे जुड़े किसी भी विवाद के हम उत्तरदायी नहीं है। इसकी नरेशन, रिसर्च एंड राइटिंग निष्ठा सारस्वत ने की है। डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दीक्षा चौरसिया, एडिटिंग एंड साउंड डिजाइनिंग अमरिंदर सिंह ने की है।
दिस वॉज एन HT Smartcast ओरिजिनल।
HT Smartcast.